अगस्त जालंधर चार बोल बड़े अनमोल जैनाचार्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज साहब 7 अगस्त रविवार को जैन स्थानक घोरमंदी में भारी जनसमूह के बीच जैनाचार्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज साहब ने फरमाया, वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या पूरे पढ़ पाए या न पढ़ पाए, लेकिन ये चार बातें जरूर हृदयंगम कर लेने चाहिए। वो ये है, जवाबदारी, समझदारी, वफादारी, ईमानदारी। इन चारों को पालने वाले जीवन सफल बना लेते हैं। महावीर ने भी 32 शास्त्रों में से मूलभूत शास्त्र चार ही बतलाए हैं, उत्तराध्ययन सूत्र, दसवैकालिक सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र। अध्यात्म बोध पाने पर आज काम आए या न आए, पढ़ा हुआ खाली नहीं जाता, कभी न कभी अवश्य काम आता है। अब चार काम की बातें और सुने, खाओगे पियोगे तो अन्न लगेगा, दान दोगे तो संग चलेगा, एकत्रित करके रखोगे तो जंग लगेगा। दूसरी बात, यदि किसी भी रिश्ते की सिलाई भावना से होती है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थवश होती है तो टिकना मुश्किल है। तीसरी बात, मुसीबत का समय एक दिन गुजर जाएगा, जो आज तुम्हें देखकर हंसते हैं वही एक दिन तुम्हें देखते रह जाएंगे। चौथी बात, मैं किसी से अच्छा काम करूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर किसी के लिए अच्छा काम करूं यह महत्वपूर्ण है। इसी तरह भगवान महावीर स्वामी ने महत्वपूर्ण बात बतलाई कि अपूछो न भासेजा, बिना पूछे नहीं बोलना, बिना पूछे दिया गया परामर्श हानिकारक होता है। एक बार तेज वर्षा हो रही थी, उस वक्त एक पेड़ पर घोंसला बनाए बैठी चिड़िया और उसके बच्चे वर्षा का आनंद ले रहे थे। उसी पेड़ पर बंदर बैठा बैठा धूझ रहा था, तब चिड़िया ने उसे बिना पूछे परामर्श दिया, हाथ तेरे पाँव तेरे, मनुष्य जैसी देह रे, झोपड़ी तू छांक बंदर ऊपर बरसे मेरे रे। चिड़िया ने 2-4 बार जब ऐसा कहा तो बंदर क्रोधित हो उठा और चिड़िया के घोंसले को एक हाथ से उखाड़ कर फेंकता हुआ बोला, शुचि मुचि दुराचारी ने, रंडे पंडित वादी ने, असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भनज ने, एक छोटी सी पिदी नन्ही जान, कान खोल कर सुन ले, मैं बंदर हूँ, किसी का मकान उखाड़ तो सकता हूँ बना नहीं सकता। अब चिड़िया रो रही है, बच्चे भी भीग रहे हैं, अब बोलने का पश्चाताप हो रहा है। दूसरी शिक्षा, शास्त्रों में आई भासमानस अंतरा, दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो उसके बीच में नहीं बोलना। कहते हैं राजा भोज सवेरे सवेरे बगीचे में घूमने गए तो महारानी अपनी सहेली से एक तरफ बैठी बात कर रही थी, तब राजा भोज बिना पूछे वहां घुस गए, तब महारानी को अठरा उन्होंने कहा, आए मूर्खाधिराज। राजा भोज सुनकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बिना बोले वहां से चले गए और सभा में जाकर बैठ गए। हर आने वाले सदस्य को मूर्खाधिराज का संबोधन करने लगे, सभी बेचारे राजा के सामने चुप थे। लेकिन जब कालिदास आए और राजा भोज ने उनको भी मूर्खाधिराज कहा तो वे तुरंत बोले, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, गतन न शोचामि, कृतन न मने, द्वाभ्या कृतियो न भवामि, राजन के नास्मि मूर्खों वत कारणे, मैं खाते खाते चलता नहीं, हंसते हुए बोलता नहीं, बीती बातों का रोना नहीं रोता, मैंने किया यह अहंकार नहीं करता, और दो बात कर रहे हो उनके बीच में नहीं जाता तो राजन बताइए मैं मूर्ख कैसे हुआ। राजा भोज को श्लोक सुनते ही अपनी गलती समझ आ गई, अतः सावधान रहिए। तृतीय बात, प्रभु की यह है, कदान कमान न मोक्ष, अधिकृत कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं है। नयनशील नाम के एक जैनाचार्य थे, वे बहुत ही ज्ञानी, पर ज्ञान का उनको अजीर्ण हो गया था। उनके अनेक शिष्य थे, उनमें एक शिष्य अत्यंत विनम्र व सहज प्रकृति का था और साथ ही गंभीर तत्व दर्शन का ज्ञाता भी था। इधर नयनशील आचार्य रात दिन आराम करते थे, उन्हें सहन नहीं था जरा सा भी कष्ट। वह शिष्य उनकी तथा अन्य सभी संतों की सेवा और परिचर्या करता, प्रवचन करता, आने जाने वाले लोगों से तात्विक चर्चा भी करता। गुरुदेव को शिष्य के उत्कर्ष से अत्यधिक हर्ष होना चाहिए, वहाँ पर उन्हें ईर्ष्या होती थी। वे नहीं चाहते थे कि शिष्य की गौरव गरिमा में 4 चांद लगे, पर यह बात वे किसी को कह भी नहीं सकते थे, वे अंदर ही अंदर घुल रहे थे। परिणाम यह आया कि एक दिन आयु पूर्ण कर वे काले नाग के रूप में उत्पन्न हुए। अब संपूर्ण साधु समाज के नेतृत्व का भार उस विनीत शिष्य पर आ गया। एक बार वे शिष्य परिवार ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ मुनिवृंद के साथ उसी उद्यान में पहुंचा जहां पर वे नागराज था। स्वाध्याय आदि से निवृत्त होकर मुनि मंडल इधर उधर हुआ। वह विद्वान शिष्य वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होने के लिए जाने लगा तो वे नागराज उस मुनि की ओर लपकने लगा। अतः सभी मुनियों ने निवेदन किया, भगवान आप एकाकी ध्यान करने के लिए न पधारें, हम सभी के बीच ही आप ध्यान करें। सभी मुनियों के आग्रह से वे विद्वान मुनि वहीं पर ध्यानस्थ हो गए। वह नाग क्रुद्ध होता हुआ ध्यानस्थ मुनि की ओर दौड़कर आगे बढ़ा। अन्य मुनियों ने उस नाग को पकड़ लिया और बहुत ही सावधानी के साथ उसे एकांत में छोड़ दिया। वह नाग उस ज्ञानी मुनि की ओर क्रोध मुद्रा से देख रहा था। उन मुनियों को समझ में नहीं आया कि इस नागराज का इतना क्रोध इस महामुनि के प्रति क्यों है। उन संतों ने वहाँ रहना उपयुक्त नहीं समझा। वे उसी दिन वहाँ से आगे प्रस्थित हो गए। आगे जाने पर एक विशिष्ट ज्ञानी मुनि के दर्शन हुए। उन संतों ने उस विशिष्ट ज्ञानी मुनि से पूछा, हमें समझ में नहीं आया कि उस सर्प का हमारे इस प्रशांत ज्ञानी मुनि पर इतना द्वेष क्यों था। वह इन मुनिराज को देखकर ही क्रोध से लाल पीला हो रहा था, इन्हें काटने के लिए ललक रहा था। उस विशिष्ट ज्ञानी मुनि ने कहा, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। यह काला नाग और कोई नहीं था, तुम्हारा ही गुरुवार था। जब वह आचार्य पद पर था उस समय भी इस महामुनि पर उसे ईर्ष्या थी। वह इसकी प्रकृष्ट प्रतिभा को देखकर मन ही मन जलता था और ईर्ष्या के परिणाम से मरकर वह काला नाग बना। पूर्व संस्कारों से आबद्ध होने के कारण आज भी उसके मन में क्रोध है, इसलिए यह उन्हें मारने के लिए लालायित था। सभी मुनि सोचने लगे, कर्मों की गति तो बड़ी विचित्र है, यदि हमने भी जरा सा दोष लगाया तो हमारी भी दुर्गति हो सकती है। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा, साधना से सावधान रहना चाहिए, क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्षण मात्र का प्रमाद भी दुर्गति का कारण बन सकता है। चौथी बात है, घारेजा प्रेमपियन प्रिय अप्रिय दोनों पर संभाव रखें। स्वादिष्ट बेस्वाद दोनों भोजन को संभाव से ग्रहण करें। गुरु की प्रेम भरी शिक्षा की तरह कठोर शिक्षा को भी संभाव से धारण करें। पिताजी अगर कठोर भाषा में भी कहे तो बेटा नाराज न हो, यही समझे कि यह भी मेरे हित के लिए है। पत्नी पति के किसी कटु बात से नाराज न हो। इसी तरह पति पत्नी के थोड़े से रूखे व्यवहार से दुखी न हो। चाहे पति का दोस्त हो या पत्नी की सहेलियां, उनके साथ जिंदगी भर नहीं रहना है। अतः उनको महत्व देकर पति पत्नी एक दूसरे की उपेक्षा न करें, एक दूसरे को ओछी बात का प्रयोग न करें। अगर पत्नी अपने पति को प्राणनाथ बोलकर सम्मान करेगी तो एक न एक दिन पति भी पत्नी को जाने मन बोलता ही है। चाणक्य नीति में भी चार बातें आई है, उत्तम आदमी को झूठ कर मनाना, ताकतवर को भेद नीति से, बराबर आदमी को माइंड से सामना करके और छोटे आदमी को कुछ ले देकर मनाया जाए। इसका संस्कृत में श्लोक यह है, उत्तम प्रणिपातेन तुल्यन स्वस्य पराक्रमे नीचन स्वल्प प्रदानेन शूरन भेदेन योजित। उत्तम व्यक्ति माता पिता और गुरुवार है। अब तक समय बहुत अधिक हो जाने से इस विषय को अगले संडे भी चलाने की संभावित घोषणा हुई। धर्म प्रभावना पूरा जैन स्थानक ऊपर नीचे खचाखच भरा था। 11 बजे तक प्रवचन चला, सभी लोग शांत भाव से सुन रहे थे। ज्योति जी जैन के 28 की तपस्या है। आज 5 की तपस्या पारुल जैन एवं 3 की तपस्या पुनीत जैन के हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।